नहीं आए वो भी करते, और तीसरी में उपपत्ति का जो भाव है सबको सबसे दिख रहा है। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं अधिकारियों के लिए, ऐसे ऐसे अधिकारियों के लिए वही सब, किंतु अंतिम चरम बिंदु में औपत्य का जो श्रृंगार है वही सबसे श्रेष्ठ है जो कृष्ण मंत्र में दिख रहा है। अब यहाँ पर कारण इस प्रकार से विदर्भ चुनावी कृष्ण, इसके बाद में वृंदावन में आए, ये सनातन गोस्वामी जी का है, और उनको प्राण दिया था तो उस बात की ये कह रहे हैं स्वरूप जी वो ब्रह्मा को, मैं ये गोलोक में ये सब ऐसा ही देखा, वो तो देख रहे थे ना, सब लीलाओं को देख रहे हैं, इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया था, और उन समस्त घटनाओं का मैं स्मरण कर रहा हूं यहाँ पर बैठे बैठे। सनातन गोस्वामी जी इसके द्वारा भक्ति राज्य का एक सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक, इन दो चार श्लोकों के अंदर, ये कृष्ण की प्रकट और अप्रकट लीलाओं में क्या वैशिष्ट होता है, दोनों लीलाओं में कोई भी भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, जो लीला वहां हो रही है प्रकट काल में वही लीला यहाँ पर प्रकट होती है, ये सिद्धांत इसको दिखता है। जो कुछ वहां पर अनुभव किया है वही लीला सब यहाँ पर वो अनुभव करते हैं, किंतु एक बात, जब तक कि गोलोक की अनुभूति न हो तब तक गोकुल की अनुभूति नहीं होगी, उसकी अनुभूति होनी चाहिए, जब अनुभूति हो जाए, जैसे स्वयं पदार्थ की अनुभूति होने पर सब पदार्थ की अनुभूति होगी, बिना भगवत स्मरण परमात्मा कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है, लिखा गया होता है आत्मा की अनुभूति से ऐसा आपको नहीं किंतु लेना, परमात्मा की अनुभूति से ही जीव तत्व की अनुभूति होती है। मैं हूं अंधकार है, अंधकार में भी मैं अपने को टटोल करके देख सकता हूँ कि ये हमारा मुख है, ये मेरी नाक है, ये आंखें हैं, ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारे पैर है, ये हाथ है, मैं हूं, अंधकार में भी देख सकता है, किंतु जहां तक दूसरों का प्रश्न है, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा, ये क्या है अंधकार तो, और उसी प्रकार से यदि अपनी अनुभूति है, इसीलिए वो बात श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, वो क्या है, वो सीखने के समान शंकराचार्य के विचार में केवल बोध लाभ ही मूल चीज है, मैं क्या हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसलिए अपनी आत्मा की अनुभूति करके उनको ये होता है कि मैंने ब्रह्म को अनुभव कर लिया, किंतु कुछ भी अनुभूति नहीं, केवल लोग भूसा को कुटने के समान है, भूसा कुट करके कोई चावल या कोई अन्न का कण नहीं मिलता है, ऐसे आत्मबोध के द्वारा कुछ भी लाभ नहीं होता। मैं हूं अंधकार में नहीं देखा, आज यदि सुजीवित हो जाए सूर्य को भी देखेंगे, दूसरे लोगों को भी देखेंगे, अपने को भी देखेंगे, सब कुछ को देखेंगे। इसलिए पर जो अनुभूति है, भगवान की अनुभूति, तत्वस्तु की अनुभूति होने से सबकी अनुभूति अपने आप में। इसलिए ज्ञाने पर्यात्मोपासना, इसीलिए कहा आत्मभूति से कुछ भी नहीं होने का जब तक कि भगवत अनुभूति। जहां जहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है अनुभूति के लिए, वहां पर समझना ये भगवत अनुभूति के लिए किया। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, सिद्धांत में प्रकट लीला और अप्रकट लीला में अथवा अप्रकट धाम बोलो और गोकुल जो प्रकट लीला का स्थल है, दोनों लीलाओं में कोई अंतर नहीं। अंतर यही केवल है, अभिमान है कि मैं वहां पर गोलोक में था और मैं होम गंदा बस यही, और कुछ अनुभूति इनको दोनों जगहों की अनुभूति है। गोलोक से लौट करके बहुत दिनों तक लीला का साधन करके और यहाँ पर आए हैं कुंज में, वृंदावन के कुंज में। क्यों आए? कृष्ण की इच्छा थी और राधा जी ने आदेश दिया है, और ये अलग से कोई नहीं है, राधा जी ने कृष्ण को ही आदेश दिया, वही तभी तो वो खुद आए हैं। इसलिए वो आए हुए हैं, इनके लिए आए। इसलिए वहां की सब अनुभूति से संपन्न होकर के इसको अनुभूति देने के लिए गुरु यही तत्व है। ऐसा गुरु जब होना वहां की अनुभूति लेकर के यथार्थ में गुरु इसी को कहा। हमारे हर गोस्वामी इत्यादि हमारी परंपरा के जो गुरु लोग हैं तभी वहां हमारा भी यथार्थ फल है। ऐसे गुरु जब इसके लिए कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी दे रहे हैं। ये सनातन गोस्वामी की बहुत विशेष कृपा है। ये लोग यदि अपनी अनुभूति हम लोगों को नहीं देते तो हम लोग जो आभास के रूप में जो कर रहे हैं ये भी नहीं होता। आज एक आदमी प्रश्न ये कर रहा था, साधारण लोगों का भी ऐसा प्रश्न है, अच्छा हम अभी जो नाम करते हैं तो हम तो जड़ी जीवा से करते हैं, कृष्ण कथा जो सुनते हैं जड़ काम से सुनते हैं, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हैं ये भी हम जड़ मस्तिष्क से करते हैं। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला ये चिन्ह है, अपराधिक है। अभी जो हम कर रहे हैं ये क्या चीज है क्या? तो हम सब वृथा कर रहे हैं ना, क्या है? जब वो चिन्ह नहीं है, हम जो नाम ले रहे हैं वो जड़ है, जो हम कथाओं का चिंतन कर रहे हैं वो भी जड़ ही है, जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं ये भी जड़ी है। जैसे हम चिंता कर रहे हैं, सब सुनिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महापुरुष जी ने कहा, मन में निज से सिद्ध देव करी आखा मौन रात्रि दिने कर इच्छे मौन। अच्छा ये क्या चीज है? तो कल्पना नहीं है, कल्पना ही तो हुई। साधक यदि ऐसा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करे तो ये कल्पना करते, कृष्ण हम देख रहे हैं कि वन में गोल चारण करने के लिए वहां पर लीलाएं करनी, अच्छा रास लीला करनी, गोपियां थक गई, अच्छा हम ये किसके द्वारा चिंतन कर रहे हैं?
मन,
ये मन जड़ है कि चेतन है?
चेतना भास,
चेतना भास है तो जड़ ही है इसका, तो इसका फल क्या होगा? अतः कृष्णामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय स्वयं मुखो ही जीवा दो स्वयं में। हम तो कृष्ण नाम और ये सब जो लीलाएं स्मरण इत्यादि जड़ जीवा जड़ मन जड़ कान इत्यादि के द्वारा वो ग्राह्य नहीं, तो फिर हम लोग क्या बेकार कर रहे? हम लोग को कभी कभी बाध्य होकर के ऐसा ही होता है, विश्वास नहीं होता क्यों नहीं होता? गुरु वैष्णव के प्रति अवज्ञा के कारण ऐसा होता है। किसी भी चीज है ना, इसलिए बार बार शास्त्रों में ऐसा कहने पर भी समझ में नहीं आता और हम लोग उसी विषय में संदेह करने लगते हैं और संदेह करते 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 उस एकदम सिद्धांत से ही गिर जाते हैं। नाथन गोस्वामी या जीव गोस्वामी कितना चक्रवर्ती था, कहते हैं कि भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन सब अपराधित है। हम उसे ग्रहण न कर रहे हैं ये दूसरी बात है, किंतु है तो वही अमान्य है कि हम एक अंतर्मुख होता है एक बहिर्मुख होता है, दोनों एक तो है नहीं। बहिर्मुख अत्यंत संदेह में भर सके इसको काल्पनिक केवल मानता है, इसलिए आचरण नहीं करता। और अंतर्मुख क्या करता है? गुरु के वचनों में अत्यंत दृढ़ मिला है और श्रद्धा ले करके और इस चीज को आरम्भ। जैसे एक आदमी पोस्ट ऑफिस में वो नौकर है, पोस्ट ऑफिस में नौकर है, वो क्या कहते हैं पियोन में नौकर काम करता है, किसी का 500 रुपये का 1000 रुपये का मुनिया दर है और उसको ऑफिस से मिला दिया अमुक आदमी को दे आओ और उसके घर का रुपया है, कहां का रुपया है, उसका कोई निकट संबंधी क्या व्यक्ति है जो वो रुपया भेजा है और उसको देने के लिए, ये भेजा कौन? ये भेजा स्वयं कृष्ण, उन्हीं का तो ये प्रेम और ये भक्ति और जो कुछ है नाम हरि कथा सब कृष्ण का है, और ले आने वाले कौन है?
गुरुवर्ग
तुम्हारे साधारण भगवान के द्वारा वो स्वीकृत हैं, गारंटेड हैं, उन्हीं लोगों को वो मिला है, वो ला रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये चीज नकली हो गई, काल्पनिक है, काल्पनिक इसको नहीं समझना चाहिए। हमारी ऑर्गन कैसे हैं, हमारी इंद्रिया ऐसे उसको नहीं गढ़ सकते, तो अभी उसको चेतन आभास मान ही लेना होगा, है अपराधी। अब वही सुनते 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 चिंतन चिंतन करते 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 सेवमुख से भगवान अपने को वहां पर किंतु जिसको तनिक भी संदेह इस विषय में है, क्योंकि भगवान चिन्ह है, उनका नाम चिन्ह है, इसलिए यही आश्वासन है कि भगवान की कथा, भगवान के नाम सब चिन्ह है। यदि हम लोग इसी प्रकार से लगे रहे, एक दिन हमारा दुख देख करके हमारे हृदय में, हमारी जीवा पर, हमारी कानों में, हमारे मस्तिष्क में जरूर अपने को रिवील करें, जरूर अपने को ऐसी ही बंधा लेकर के हृदय में दृढ़ विश्वास लेकर के चलना चाहिए। वैष्णव की कथाओं को भी यदि मान ले कि वो सिद्ध नहीं भी है, किंतु बातें कहां की करते हैं ये तो देखो, कहां की बातें कर रहे हैं? अपने गुरु जी से मिला ना उनको, एक न एक दिन तो वो भी सिद्ध होंगे, नहीं भी सिद्ध है तो पद पर ठीक से चल रहे हैं, तो फिर इस बात को देखते दृढ़ विश्वास के साथ में हरिनाम हरि कथा एकदम ठीक कथा। भाई प्रकट कर रहे हैं कि पद्म पुराण इत्यादि में कृष्ण का पुनरागमन वर्णन है, इत्यादि स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं होने पर भी ऐसी बातें वहां पर हैं। कृष्ण सत्य संकल्प है, उन्होंने कहा था कि मैं ब्रज में अपने सुहृदों की रक्षा करके, उनको प्रसन्न करके मैं अपने ज्ञातियों की से मिलने के लिए आऊंगा कुछ दिन मथुरा में। ज्ञाति माने किसको कहते हैं? ज्ञाति कहते हैं अपने कुटुंबी संबंधी को ज्ञाति कहते हैं, जैसे ये मेरे भाई ये मेरे पिता है।
खून के साथ
खून के साथ में जो ब्लड रिलेशन होता है खून का, उसको कहते हैं ज्ञाति। जैसे नंद बाबा उपनंद बाबा क्या है? कृष्ण जब गोपों को अपनी ज्ञाति कह रहे हैं तो क्या हुआ? ब्लड रिलेशन का। और उनको कहा सूर्य हृदय से जिनका प्रेम का ही केवल संबंध है उनको कहते हैं सूर्य। इसलिए सूर्यों की मैं प्रसन्न करके ज्ञातियों को से मिलने के लिए मैं बहुत थोड़े दिनों में ही यहाँ पर आऊंगा। कृष्ण के वचन का भी अभिचार नहीं होगा। सत्य संकल्प है भगवान जी सतत्य योनि भागवत में बतलाया है। कृष्ण कभी कभी गुरु जांगल देश से होते हुए इंद्रप्रस्थ में जाते थे। ये गुरु जांगल प्रदेश क्या है? यमुना के किनारे जो देश है प्रदेश, उसको गुरु जांगल प्रदेश। तो ये प्रदेश यमुना के निकट यमुना के पास ही नहीं, ये आसपास फैला हुआ है, इसलिए वो आते थे। वर्णन किया गया और भी बहुत से ऐसी बातें हैं जिनको खूब स्पष्ट रूप से विचार करना पर ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण विकृत में यहाँ पर आते। दूसरी बात, भागवत में है भक्तों के निकट काम भेजू के समान है। अभी दूलिया क्यों दूलिया क्यों दूलिया, जो कुछ दूधी नहीं काम भेलू,
जो
कामना करेंगे उसको दे देते। भागवत भी जो भक्त जैसा रहेगा उसको उसी के अनुसार में अर्थ देते। पूर्ण बुद्धि वाले जो भक्ताभास हैं, जो भक्ति विरोधी हैं, जो भक्त हैं, इनके लिए अलग अलग में जो जैसी कामना है वैसे ही उसकी अर्थ भी दे दे। इसीलिए वो राजपंच अध्याय इत्यादि में विशेष करके पहले 29वें अध्याय में कितने कितने प्रकार के अर्थ हमारे जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर एक ही बात से कहते हैं, तुम लोग घर लौट जाओ, यहाँ मत रहो। अब मत को लगा दिया कहा
मत लौटो,
तुम मत लौटो यही रहो। कैसे अर्थ कर दिया हो गया ना, एक शब्द के न को इधर का इधर कर दिया। और पद्य में ऐसा होता ही है, पद्य में न लगा दो पहले न प्रजम कर दो, ब्रज में
लौटिया
और यही रहो, बस हो गया उल्टा एकदम अर्थ हो गया। इसलिए उनके लिए वैसा, उनके लिए ऐसा। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है इसके मतलब वो कृष्ण बिना ब्रज के रह ही नहीं सकते, इसलिए उनका ऐसे ही प्रकट लीला में जैसे आते हैं, अप्रकट लीला में कृष्ण वहां पर ऐसा मालूम होता है कि गए हैं, किंतु ऐसा गए हैं द्वारका मथुरा किस लिए? प्रकट लीला का जो भाव है उन पर तमाम प्रभाव कर देता है। जैसे मालूम होता है कि हम अभी उसी लीला में, इसलिए वो समझते हैं कि गए। इसलिए वहां पर कहीं कहीं पर तीन चार तीन महीने का प्रवास निकला है। इसी प्रकार से कृष्ण आते हैं इसको आने
ख्याकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज 16 अगस्त श्री कृष्ण जयंती, इसके उपलक्ष्य में श्रील महाराज जी अमरनाथ जी दर्शन से वचन दे रहे हैं।
ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विजे नमः। परमादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, हमारी बेटियां और प्यारे बच्चों, भारत के गौरव संत तुलसीदास गोस्वामी जी का आज गुरुभाव तिथि। मैं यहाँ आते ही बहुत प्रसन्न होता हूँ। अमरनाथ विद्यालय वास्तव में ब्रज का ही नहीं बल्कि भारत का एक अनुपम आदर्श शिक्षा संस्थान है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मैं समझता हूँ जरूर उनका परम सौभाग्य होगा, तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने वाली इस संस्था में आप लोग आते हैं। आज मैं संक्षेप में कुछ तुलसीदास जी के विचारों का को मैं व्यक्त कर रहा हूं। किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी साहित्य, उसका साहित्य एक गौरव की वस्तु होती है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही वेद, उपनिषद, पुराण रूपी साहित्य का उच्च स्थान रहा है। तुलसीदास जी ने अपने मानस में वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का मंथन कर जो उपनीत बना, नवनीत बनाया, उसमें अपने विचारों का कुछ विश्लेषण देकर के उसे ऐसी सुंदर भवरोग की व्याधि की एक औषधि तैयार की जिसे केवल मनुष्य ही नहीं विश्व के समस्त प्राणियों का उपकार हो। उन्होंने पहले आपके शिक्षक महोदय ने बतलाया, अपने विषय में उन्होंने कहीं कुछ लिखा नहीं, किसी प्रकार से संग्रह करके कुछ बातें उपलब्ध होती हैं। उसमें बहुत सी बातों को सहज सहज भाषा में उन्होंने बतलाया। दो एक बातें उसी में से लेकर के अपना वक्तव्य संक्षेप में मैं वर्णन करूंगा। उन्होंने विवाह किया बहुत किशोर अवस्था में, वो भी अपने गुरु जी के आदेश से। अपनी स्त्री पर बहुत ही अनुरक्त थे, यहाँ तक कि अपने वो बिहार में चली जाती तो उसके साथ ये भी चले जाते उसके पीछे पीछे। कभी वो अपने पिता के घर में गई, पीछे से जब ये पहुंचे तो उसने लज्जित होकर के थोड़ा सा कहा, आप हमारे इस रक्त सोनी और ये मन से भरे शरीर के प्रति जिस प्रकार से अनुरक्त हैं, आप यदि राम के प्रति वैसे अनुरक्त होते तो आपका जीवन सार्थक हो जाता, आप अजर अमर हो जाते। बस इनके जीवन की धारा मुड़ गई, घर छोड़ करके चले गए काशी में, अयोध्या में, बहुत तीर्थों में उन्होंने घूमे। कहते हैं कि इनके गुरु नरहरि जी थे, अभी इन्होंने बतलाया, उनसे समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया, बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके जब ये काशी में थे, जब रामचरितमानस को उन्होंने लिखा, तो पंडितों में कुछ बड़ा इनके प्रति द्वेष फैला। उन्होंने इनका और इनके ग्रंथ का निरादर भी किया। अंत में तुलसीदास जी ने विश्वनाथ जी के सामने, काशी विश्वनाथ के सामने, वेद उपनिषदों को, पुराणों को और अपने ग्रंथ रामचरितमानस को प्रतियां वहीं पर रख दी और कहा कि जो श्रेष्ठ हो वो ऊपर में आ जाए। उनके कहने के साथ ही साथ में लोगों ने देखा कि रामचरितमानस उनके ऊपर में विद्यमान है। क्यों? इसलिए ये सब संस्कृत के ग्रंथ हैं, हमारे उपजीव्य ग्रंथ हैं, किंतु रामचरितमानस लौकिक भाषा, लोक भाषा का ग्रंथ है, सरल सहज शब्दों में है। साहित्य कहते हैं किसको? हितेन सह वर्तमान इति साहित्य, जिसमें कुछ हित हो, हमारा जीव मात्र का कल्याण हो, उसको कहते हैं साहित्य। आजकल साहित्य के नाम पर बहुत सी चीजें ऐसी चलती हैं जो यथार्थ में जीव का अकल्याण, अहित करती हैं, वो साहित्य नहीं है। तुलसीदास जी ने जो साहित्य रामचरितमानस की रचना की है, उसका उसकी उपयोगिता तो आप देख ही रहे हैं, विश्व सभी उसका आदर करते हैं। उसकी एक चौपाई को भी यदि हम अपने जीवन में आचरण करें, केवल याद करने से नहीं होगा, केवल उसको अपने जीवन में थोड़ी सी बात को ही आचरण करें, एक उपदेश तुलसी के, एक चौपाई का आचरण भी, हमारा जीवन उन्हीं के समान में पवित्र बन जाएगा। जैसे एक मैं रामचरितमानस का की एक चौपाई को लेता हूं, उसमें उन्होंने कहा श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, भजिय राम सब काज बिसारी। प्यारे बच्चों, अभी तुम्हारे जीवन का निर्माण हो रहा है, इस विषय को तुम लोग सुनना। तुलसीदास जी का गौरव इसलिए है, यदि उन्हीं के शब्दों में हम लोग एक इसी उनके एक ही चौपाई को अपने जीवन में आचरण करें, हमारा जीवन शांतिमय, सुखमय, लोक में, परलोक में सब समय के लिए सार्थक बन जाएगा। कहते हैं श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी, हे उर्गारी, उर्गारी माने गरुड़ जी, श्रुति माने वेद, स्मृतियां और पुराण इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, ये अनुभूतियों के आधार पर मंत्र दस्ता ऋषियों के द्वारा ये प्रकाशित है, ये नित्य अजर अमर साहित्य है। इनका सबका यही एकमात्र तात्पर्य है, उठते बैठते छींकते हुए भी और की तो बात क्या, भले ही ध्यान न लगाए कोई भी बात, श्रद्धा भी न हो किसी प्रकार से भी, राम नाम यदि निकल गया तो जीवन को पवित्र कर देगा। अजामिल ने एक बार मरते समय केवल नारायण शब्द का उच्चारण किया और वो परलोक की गति को प्राप्त हो गए, अजर अमर हो गए। इसलिए कहते हैं श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, भजिय राम सब काज बिसारी। अपना काम भी कोई है बिगड़ जाए कोई भी हर्ज की बात नहीं, कोई भी हानि की बात नहीं यदि राम नाम का वो भजन करता। कलयुग केवल नाम आधार प्रतिपूर्वक भजन करना पूजन करना यदि न भी हो सके, यदि राम नाम उच्चारण यदि हो गया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। और यदि प्रतिपूर्वक उसने यदि राम नाम का अपने जीवन में स्थान दे दिया, सब समय राम राम इत्यादि करता है तो उसका जीवन अवश्य रूप में था। तुलसीदास जी ने इसी के साथ ही इसके बाद ही में लिखा है कि मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। कोई प्रतिज्ञा एक बार करता है, कोई प्रतिज्ञा तीन बार करता है, और ये नौ बार प्रतिज्ञा करते हैं तुलसीदास। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं, तुम राम नाम करो और यदि तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ तो मैं इसके लिए दायी हूं। कहते हैं खरगोश के पीठ के ऊपर में यदि केस उग जाए ये मैं मान लूंगा, यदि आकाश में फूल खिल जाए वो नहीं खिलता, कभी खिल भी जाए तो मैं इसे मान लूंगा, किंतु राम का भी मुख होकर के कोई भी जीव कभी भी सुख पा लिया ये मैं कभी भी कदापि स्वीकार नहीं करता। हिम से अनल प्रकट बन हुई, बर्फ से आग पैदा नहीं होता, किंतु बर्फ से यदि आग भी पैदा हो जाए कोई कह दे तो मैं मान लूंगा। अंधकार बन रवि ही न सावे, अंधकार सूर्य को निकल जाए ये भी बात संभव मैं मान सकता हूं, कभी नहीं संभव। जहां सूर्य उदित होगा वहां प्रकाश हो जाएगा, किंतु अंधकार सूर्य को भले ही निकल जाए मैं इसको मान लूंगा, किंतु यह नहीं मैं मान सकता हूं राम का विमुख होकर के राम का भजन नहीं करता वो जीवन में सुखी हो गया शांति पा लिया ये कभी कदापि स्वीकार नहीं। और भी कहते हैं बारी मथे बन हो यद्धिता सिकता से बनते बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपेन। अपेन सिद्धांत किसको कहते हैं? पत्थर की लकीर तुम लोग जानते हो, पत्थर पर लकीर यदि खींच दी जाए किसी गहरे चीज से तो जैसे वो मिट्टी नहीं है ऐसे अपेल जिसको पेला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, समस्त शास्त्रों का यह सिद्धांत है और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। क्या बिना राम का तो कोई सुखी रह ही नहीं सकता है। पारी मथे बन हो ये घृत, पानी को मथने से बिलोने से भले ही घी हो जाए, पानी मथने से घी नहीं होता। लाख वर्ष तक लाख करोड़ मिल करके भी कोई पानी का मंथन करे घी का एक बूंद भी नहीं होगा। किंतु कहते हैं बारी मथे बन हो ये घृत, मैं मान लेता हूं यह संभव हो सकता है। और रास्ते के में पड़े हुए रेती से भले ही उसको कोल्हू में पीसने से भले ही तेल मिल जाए ये भी संभव है, ये भी असंभव। सरसों तेल को घानी में पीसने से कल में पीसने से उसमें से तेल निकलता है, किंतु रास्ते की धूल से नहीं निकलता। मैं उसको भी संभव मानता हूं, हो सकता है, किंतु बिन हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपे। बिना हरि भजन के किसी का जीवन सुखमय शांतिमय पवित्र हो सका ये कभी भी नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन में यदि श्रद्धा नहीं है तो भी अंततः सोते उठते बैठते भी यदि पलंग से उठते हो एक बार प्रभु राम को स्मरण करो। सोने जा रहे हो कभी भी समय नहीं मिलता,
उनको स्मरण करो। तुलसीदास जी ने कहीं लिखा है अपने, उनके बहुत से ग्रंथ हैं, दो चार कालों ने स्मरण कराया, बहुत उनके ग्रंथ है, उनमें कहीं लिखा है कि कोई तेली था, पढ़ा लिखा नहीं था, तेल पीड़ता था, पहले घानियां चलती थी, बैल को उसमें टोपी लगा देते थे आंखों में और वो अंधा होकर के चलता रहता और रस्सी से एक लकड़ी की पट्टी को बांध करके उसी पर कुछ भार दे करके चल चल हट हट किया करते, वो दिन भर चलता रहता, तेल इससे बनता। तेली को समय नहीं था, कभी नारद ऋषि उससे बोले, अरे कहीं तू एक बार तू राम नाम तो कर, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। उन्हें मुझे समय नहीं मिलता। अच्छा प्रति समय करते समय तू क्या करता है? तो मैं तो कुछ नहीं करता। तो उस समय भी तू कर, और ये अच्छी बात है। सती करने मैदान में गया और वहां पर राम नाम उच्चारण किया। जहां राम नाम होगा हनुमान जी जरूर वहां पर उपस्थित होते हैं। ये केवल कहानी किस्सा नहीं है, यह यथार्थ बात है। भगवान के भक्तों में भी भगवान के समस्त गुण होते हैं, वो भी अंतर्यामी शक्तिमान होते हैं। हनुमान जी वहां पर पहुंच जाते हैं, नाम और नामी दोनों अभिन्न होता है। बस नाम कहा, हनुमान जी वहां पर सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए अपने प्रभु के लिए। अरे ये तेली बड़ा भाई दुष्ट है, गंदी स्थिति में, अपवित्र स्थिति में ये राम राम कर रहा है। उनको क्रोध आया और एक लात जमाया बड़ी जोर से। हनुमान के जिस लात को रावण सह नहीं सका, गिर गया और मुंह की खाली मुंह से धूल चाट गया। कुंभकर्ण और मेघनाद भी गिर गए। वो हनुमान का लात वो एकदम आसानी से सहज में सह करके और राम राम कहता है। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो तो राम राम कहता हुआ उठ करके चला गया, ये पीछे पीछे चले गए। शाम को राम भवन में पहुंचे। जब राम भवन में पहुंचे तो दूर से रामचंद्र जी के घर से आवाज आ रही थी, ऊह आह इस आवाज आ रही। हनुमान जी वहां पर जाकर के उनको प्रणाम किए, प्रणाम करिए फुले प्रभु, आज आप ऊह आह क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ कष्ट हो रहा है? तो तुमने ही हमें एक खैच करके जोर से लात मारी और तुम पूछ रहे हो ये कष्ट हो रहा है? तो प्रभु हमने कम मारी? अरे तू तो जानता है ना, नाम और नामी दोनों अभिन्न होता है। इस जगत में ऐसा कहीं नहीं है, किंतु भगवान का नाम और भगवान दोनों एक होते हैं। बल्कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा दयालु होता है और शक्तिमान होता है। तो मैं तो वही था, जो ही उसने तेली ने राम नाम किया मैं पहुंच गया, और तुमने जो खेच करके लात मारा वो मैंने अपने तीस के ऊपर में मैंने ले लिया, इसलिए इसको कुछ नहीं लगा। ओ प्रभु, तो मैंने तो बहुत गलती की, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस किसी भी अवस्था में जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और अश्रद्धा से भी कोई नाम ले भगवान का, तो उसका कल्याण। ये राम नाम आया कहां से? तुलसीदास जी साधारण नहीं थे, वो सिद्ध महात्मा थे। लोगों को उपदेश देने के लिए, राम का प्रचार करने के लिए मनुष्य के रूप में वो पधारे थे, यथार्थ में मनुष्य नहीं थे। तुलसीदास जी, सूरदास जी, व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में आते हैं। और केवल मनुष्यों का नहीं, प्राणी मात्र का उपकार ये लोग करते हैं। चाहे देखो तो रामचंद्र जी आए, तुलसीदास जी ने अपने रामायण में गिद्ध वो जटाई सबरी देखो, सुग्री और बंदर, हनुमान बंदर, रीछ सुग्री, इन सबके ऊपर में कृपा की। भारतवर्ष के बिहड़ वनों में वो घूमे दंडकारण्य इत्यादि में, क्यों खाली पैर गए, जूता नहीं पहना, वहां की भूमि पवित्र थी, वहां के जीव जितने थी जड़ जंगम तमस लोगों का उद्धार। तुलसीदास ने इसका सजीव चित्रण खींचा है, केवल कवि मात्र नहीं थे, केवल साहित्यिक ही नहीं थे, ये तो जागतिक ये छोटी छोटी बात है। तुलसीदास जी जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आए थे और रामचरितमानस की हिंदी भाषा में लोक भाषा में सृजन कर हमारे वेद शास्त्र पुराण इत्यादि की पुनरावृत्ति उन्हीं के उपदेशों को अपने रामचरितमानस में रखा। इसलिए प्यारे बच्चों इनके संबंध में अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपने जीवन में तुम लोग राम को कभी मत भूलना, ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी तुलसीदास। मुख से जितनी भी कविताएं बोलो, जो कुछ भी कहो, और राम नाम का आश्रय नहीं लिया, तुलसीदास जी की कृपा कदापि नहीं हो। और जो उनके प्रभु का स्मरण करेगा, तुलसीदास जी अपनी पूर्ण कृपा करके तुम लोगों में भी अपनी कवित्व शक्ति, अपना सार चारित्र, अपना उपकार गुण, अपनी दयालुता, अपनी शक्ति सबका संचार करके तुमको भी भारत राष्ट्र का एक अनुपम नागरिक तुम लोगों पर, तुम लोगों के द्वारा विश्व का कल्याण होगा, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए तुम लोग एक बार राम की ध्वनि बोलो, श्री रामचंद्र की जय, या रामचंद्र की जय। मैं यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता thank you.
है।